देव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहूणं सिद्धमनंतमणिन्दिय मणुवमपत्थसोखमणवज्जं केवलपहोहणिज्य दुर्नयतिमिरञ्जिनं नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो मूल ग्रंथ षटखंडागम उसकी यह टीका है। षटखंडागम ग्रंथ दर्शन आचार्य की उपदेश के अनुसार पुष्पदंत और भूतवली आचार्यों ने लिखा था, उस पर हम 62 नंबर पेज पर आए हैं। 61 से हमने जो बात उठाई थी उसको फिर दोबारा देखते हैं। सबसे पहले ग्रंथ की शुरुआत होती है तो शुरू में मंगल किया जाता है। ग्रंथ का निमित्त और ग्रंथ का हेतु बताने के बाद उसका प्रमाण कितना है, ग्रंथ का नाम क्या है और उसके पश्चात अंत में ग्रंथ के कर्ता कौन है इसकी बात करते हैं। तब यहाँ कर्ता कौन है उसकी बात यहाँ चल रही है। तो कल हमने देखा था कि कर्ता के दो भेद हैं, एक तो अर्थकर्ता और एक ग्रंथकर्ता। अर्थकर्ता यानी मूल उपदेशक कौन है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ तीर्थंकरों की बात उठाएंगे। और ग्रंथकर्ता में वो उसके उत्तरोत्तर कौन कौन ग्रंथकर्ता है उसकी भी बात करेंगे। तो प्रथम यहाँ महावीर भगवान हमारे यहाँ अभी शासन है, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान है। हमें जो उपदेश या परंपरा से जो उपदेश प्राप्त है उनके मूलकर्ता महावीर भगवान है, तीर्थंकर थे ना यहाँ के। तो महावीर का अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो उनका शरीर कैसा है और उनका स्वरूप क्या है इसकी सब बातें उठाते हैं। ये फिर हम पढ़ते हैं 61 पेज पर अंत चार लाइन वहां से। पसीना रज अर्थात बाह्य कारणों से शरीर में उत्पन्न हुआ मल, ये एक मल की बात है। दूसरा मल यानी शरीर से उत्पन्न हुआ मल, जिसको मल मूत्र आदि कहते हैं वो शरीर से उत्पन्न हुआ मल। रक्त नेत्र और कटाक्ष रूप बाणों का छोड़ना आदि शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित, जैसे जीव के राग द्वेष के परिणाम होते हैं वैसे शरीर में भी उसके अनुसार कुछ क्रियाएं होती है, कुछ उसमें भी विकार पैदा होता है, उससे भी रहित है। समचतुरस्र संस्थान वज्र ऋषभ नाराज सहनन दिव्य सुगंधमय, ऐसा शरीर के विशेषण चल रहे। सदैव योग्य प्रमाण रूप नख और रोम वाले, क्योंकि एक बार केवल ज्ञान होने के बाद नख और केश नहीं बढ़ते। आभूषण आयुध वस्त्र और भय रहित और सौम्य मुख आदि से युक्त ऐसे विशिष्ट शरीर को धारण करने वाले, ये तीर्थंकरों की अपेक्षा ये सहनन आदि जो बताए हैं, ये संस्थान। सहनन तो सबका ही वज्र ऋषभ नाराज सहन होता है, परंतु संस्थान तो तीर्थंकरों का तो समचतुरस्र ही होता है। फिर कैसे उपसर्ग से रहित है, तो उपसर्ग देवों द्वारा किया हुआ होगा या मनुष्यों द्वारा होगा, तीर्यंचों द्वारा या अचेतन कृत भी उपसर्ग होगा। तो कोई पूछ सकता है कि तीर्थंकरों पे उपसर्ग नहीं होता तो पार्श्वनाथ भगवान पर तो हुआ था ना, आपके पास कुछ उत्तर है उसके लिए? हाँ हाँ बताना। हाँ नहीं, मगर ये तीर्थंकरों के, हाँ केवल ज्ञान होने के पश्चात कोई उपसर्ग नहीं रहता, वो भले सामान्य केवली हो या तीर्थंकर केवली हो, उपसर्ग तो मुनि अवस्था में हो सकता है। जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही वो उपसर्ग वगैरह सब टल जाता है, इंद्रादि आके पूजा करते वो बातें, बाकी हम आगे की बातें नहीं करेंगे, मगर अभी उपसर्ग केवल ज्ञान के बाद नहीं रहता। तो ये उपसर्ग चारों ही प्रकार के हो सकते हैं, एक देवकृत पूर्व जन्म का कोई वैरी देव होता है तो ऐसे उसमें वो भाव उत्पन्न हो कि चलो इसको सताए, मनुष्यकृत जैसे अभी पांडव ध्यान में लीन थे और वो दुर्योधन के भांजे वो आके उन्होंने सिगड़ी रख दी, आभूषण पहनाए, तपे हुए लोहे के ऐसे आभूषण पहनाए, तो ये मनुष्य कृत। तिर्यंच कृत यानी कोई मुनि ध्यान अवस्था में बैठे, कोई सिंह आता है खाता है, स्यालनी आती है खाती है, तिर्यंच कृत। और नैसर्गिक भी कुछ होते ना, अचेतन कृत। ऐसे चार प्रकार के उपसर्ग, क्षुधा आदि 22 परिशह। देखिए क्या 22 परिशह कौन से होते हैं? हाँ हाँ बोलो।
दंशमशक, नाग्नेय,
अरति,
स्त्री
निषद्या,
स्त्री निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ रोग, अलाभ रोग, मल, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अदर्शन, अज्ञान।
बहुत बहुत अच्छा। ये 22 परिषय, तो इनके 22 परिषय भी नहीं है शास्त्र में। तत्वार सूत्र में आता है एकादश जिने सूत्र है, जिनेन्द्र भगवान को एकादश होते हैं, परंतु वहाँ कौन से कर्मों की उपस्थिति है अभी वेदनीय है इतना बताने के लिए उपसर्गों के वहाँ नाम आए हैं। परंतु एकादश यानी 11 परिषय की बात है। 22 परिषय में से 11 परिषय बताए हैं, परंतु 11 परिषय क्यों बताए? वहाँ वेदनीय कर्म अभी है उसका सद्भाव बताने के लिए। उनके कोई ऐसा परिषय या ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यानी वैसे उपसर्ग भी होता नहीं है, और उसकी तो उसमें जुड़ने की तो बात तो है ही नहीं, मुनियों के भी नहीं होती तो इनकी तो है ही नहीं, ख्याल है। राग द्वेष कषाय और इंद्रिय विषय आदि संपूर्ण दोषों से रहित, यहाँ तक तो हमने कल विस्तार से चर्चा भी की थी। अब ये समोचरण में जो उनकी भाषा संबंधी जो उनकी दिव्य ध्वनि जिसको कहते हैं अतिशय वाणी जो है उसका भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं एक योजन के भीतर दूर अथवा समीप बैठे हुए, वहाँ के जो श्रोता है एक योजन में बैठे हैं तो नजदीक वाले जोर से सुनते होंगे और दूर से नहीं सुनते होंगे, ऐसी बात नहीं। तो क्या वहाँ भी लाउड स्पीकर की ये व्यवस्था थी क्या? तो ऐसी उनकी दिव्य ध्वनि की विशेषता है कि सब इक्वल सुने और अपनी अपनी भाषा में सुने। वहाँ कोई वो हम टीवी पर देखते हैं ना, वो तो अपनी अपनी भाषा में वो लगाना कान में, तो ईयरफोन लगाना और अपनी भाषा में सुन जावे, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो सहज, वो दिव्य ध्वनि है, इसीलिए उसको नाम है दिव्य ध्वनि, वो उसकी विशेषता है। और उसमें भी वहाँ जो मागध देव है ना उसमें कुछ उसका निमित्त बनता है। वाणी सबके अभी जैसे यहाँ लाउड स्पीकर आदि की व्यवस्था जो कुछ होती है वहाँ कुछ जो उनके यथा योग्य करते हो गए व्यवस्था, तो उसमें वो मागध नाम के देव उसमें निमित्त होते हैं, इसलिए उसको मागधी कहते हैं। हाँ, ये मगध देश के कारण मागधी नहीं है, वो किसी देश की भाषा नहीं है वो मागधी।
ये देव का ऐसा कोई खास काम है कि वो हर वो ओम दिव्य ध्वनि जो निकलती है उसको अन्य अन्य भाषा में ट्रांसफर करने का काम इनका है, वो निमित्त है ये तो कह नहीं। अब वास्तव में तो ऐसा है कि इसके लिए जिनेन्द्र भगवान के वाणी को अर्धमागधी कहा या मागधी कहा, तो ऐसा नहीं कि वो कोई विशिष्ट भाषा थी, वो तो ओम ही ध्वनि निकल रहे हैं, लेकिन ये मागध नाम के देव है उनके निमित्त से ये ट्रांसफर होती है, क्योंकि जैसे कान में पहुंचती है तो वहां भाषा रूप से परिणमती है, तो ये सारे जो है इसके लिए उसको मागधी कहा।
यानी जब निकलता है ओम ध्वनि तो निरक्षरी है, और जब श्रोता के कानों में पहुंचते हैं तो अक्षर रूप वो परिणमित हो जाती है, ये उसकी दिव्यता है। और हम अपने लैंग्वेज में सुनेंगे, कोई गुजराती में सुनेंगे, कोई ये अपनी अपनी भाषा में समझ जाएगा, ऐसी बात है। मागध नाम के देव, मागध मगध देश था ना, तो ये इसका देव का नाम है मागध, उस देश से कुछ नहीं लेना देना उसका, उस देव का नाम है। जैसे हम कहते हैं वायु कुमार देव है, अग्नि कुमार देव, वो क्या करते हैं ऐसे पवन चलाते हैं मंद मंद वगैरह, अलग अलग समोचरण में भी अलग अलग देव अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी बजाते हैं, वैसे यहाँ ये दिव्य ध्वनि में निमित्त रूप से वो मागत वो उसकी व्यवस्था देखता है, इतनी बात है। तो ये दूर बैठे हुए या समीप बैठे हुए वो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा से युक्त ऐसे तिर्यंच देव और मनुष्यों की भाषा के रूप में परिणत होने वाली, यानी वो वाणी ही ऐसी है कि उसमें परिणत होने की उसमें योग्यता है। हमारा लक्ष्य वो निमित्त पर जाता है। अरे वो देव क्या करता होगा उस वाणी को, उस वाणी में ऐसी योग्यता है तो वहाँ वैसे उचित निमित्त भी होता है। और मनुष्यों में वो तो 18 महाभाषा और तिरेंच अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, इतना ही। 700 लघु भाषा में तिरेंचों की अलग अलग भाषा होगी अपनी अपनी, जैसे पंछियों मनुष्यों की मुख्यता से बात है ना। ये हम यहाँ भी देखते हैं ना, कितनी सारे इंग्लिश है, वो अरेबिक है, हर एक देश की अपनी अपनी भाषा है और उसमें भी कितनी कितनी सब डिविजन्स है। अब मराठी खाली ले तो उसमें भी अपनी मराठी, कोई शुद्ध मराठी होगी, कोई गांव में जाए तो वो तो कहते हैं ना, संस्कृत में कहावत है ऐसी कि 10-10 माइल पर वो भाषा बदलती है। बहुत सारी भाषा होती है। और कैसी है, न्यूनता और अधिकता से रहित, मधुर, मनोहर, गंभीर और विशद, विशद यानी स्पष्ट, उसके द्वारा जो हमें तो स्पष्ट जो पदार्थों का ज्ञान स्पष्टपणे भाषित हो जाता है और वो भाषा भी स्पष्ट है, ऐसी भाषा के अतिशय को प्राप्त, यानी जिनको ऐसी भाषा है ऐसे भगवान, ये दिव्य ध्वनि भी उनका एक अतिशय है, भगवान का अतिशय, तो ऐसे दिव्य ध्वनि वाला जो अतिशय है उससे युक्त या उसको प्राप्त। और कैसे है, तो सबके द्वारा पूजित, तो कौन कौन है उनकी पूजा करने वाले, उनकी लिस्ट बताइए कौन है वे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी। भवनवासी तो मालूम है ना, भवनवासी किसको कहते हैं, व्यंतर, ये सब भवनत्रिक में ये तीनों आ गए, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। कल्पवासी जो 16 स्वर्ग है और ऊपर के ग्रह के, ये सबको कल्प कहते हैं, उसमें निवास करने वाले वो कल्पवासी या विमानवासी कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही, कल्पवासी कहो या विमानवासी कहो। तो उस देवों के इंद्रों से, देव तो आते ही है, उनके इंद्र आते, प्रत्येक स्वर्ग के इंद्र आते हैं वहां। विद्याधर चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, ये सबका अर्थ हमने कल देखा था। राजा, अधिराज, महाराज, अर्धमंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक राजाओं से इंद्र, अग्नि, वायु, भूति, सिंह, व्याल आदि देव तथा विद्याधर, मनुष्य, ऋषि और तिरियंचों के इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त। वो ऐसा आता है ना, 100 इंद्रों की हाजिरी में, स्वामी जी के प्रवचन बहुत बार आता है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान ने ऐसी वाणी कही, ये ऐसी बात कही, तो 100 इंद्र ने, ये सभी जो देवों के इंद्र है, मनुष्यों में एक चक्रवर्ती है, तिरियंचों में एक सिंह है, उसको भी इंद्र कहेंगे उनका, हाँ, अष्टापदीय सिंह ऐसा कहते हैं। तो ये 100 इंद्र कौन कौन से हैं, तो भवनवासी के 40 होते, भवनवासी 10 प्रकार के देव होते हैं, तो हरेक में दो दो इंद्र होते हैं और दो प्रतिंद्र, तो इंद्र और प्रतिंद्र मिलकर एक एक के 4 हुए और भवनवासी 10 प्रकार के, तो उसमें तो 40 उनके हो गए। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, तो व्यंतरों के 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, 8 चौक 32 वे हो जाएंगे। ज्योतिषों में सूर्य और चंद्र, ऐसे 2 ज्योतिष देवों में से, देवों की बात है, ये तो आप कहेंगे सूर्य उसके अपनी जगह छोड़कर वहाँ चला जाता है, वो बात नहीं है, सूर्य तो विमान है जो हमें दिखता है, और वहाँ जो ज्योतिष देव है वो तो विमान में रहने वाले देव होते हैं, तो उनका एक इंद्र, इनका एक इंद्र, एक इंद्र एक प्रतिंद्र। फिर जो 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्गों में से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4 में एक इंद्र एक प्रतिंद्र, ऐसे 8 वहां के हुए। 5वें से लेकर 12वें तक है तो 8, परंतु उसमें 4 ही इंद्र होते हैं और 4 प्रतिंद्र, और अंतिम जो 4 रहेगी 13 से 16, उसमें 4 इंद्र 4 प्रतिंद्र, ऐसे 8, 8 और 8, 24 ये हो गए। पहले 40 देखे, फिर 32 देखे, फिर 2 देखे, अब 24 देखे, और चक्रवर्ती और तिरेंच में से सिंह, इस तरह से ये 100 इंद्र हो जाते हैं। इनके द्वारा भगवान पूजित है, इसलिए अरहंत शब्द तैयार हुआ ना, अरह यानी पूजा के योग्य, ऐसे श्री महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता समझना चाहिए। ये पूरा जब अभी जो देखा था अभी तक, उनकी वाणी कैसी है, उनका शरीर कैसा है, वो कैसे है, तो ये भगवान महावीर का यहाँ वर्णन हुआ। अब क्षेत्र विशिष्ट अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। यहाँ किसका हमने पहले निरूपण देखा? द्रव्यकर्ता, यानी कौन सा जीव है उसकी बात की। अब क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में दिव्य ध्वनि छूटी थी उसकी बात करेंगे। कर्ता के चार, अर्थकर्ता के चार भेद, द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा और भाव अपेक्षा। इसमें से अभी क्षेत्र की बात चल रही है। क्षेत्र विशिष्ट अर्थकर्ता पंचशैल पूर्व में, हाँ गाथा पढ़ेंगे ऊपर की 52 नंबर। पंचशैल पूरे रम्मे उले पौवदुत्तमे नाना दुम समाइन्ने देव दानव वंदिदे। यही हो, 53 वाले आगे आदि है। महावीरेण थो कहियो भविय लोयस्स। वो एक्स्ट्रा एक लाइन है वहां। अब यहाँ नीचे उसका अर्थ पढ़ेंगे हम। पंच शैलपुर, शैल है पर्वत, पांच पहाड़ी जहाँ है ऐसा जो नगर है पंच शैलपुर में। पंच पहाड़ी अर्थात पांच पर्वतों से शोभायमान राजगृह नगर के पास। राजगृह में गए थे आप? तो वहाँ पांच पहाड़ी है, वहाँ वंदना करते ना पांच पहाड़ियों की, वो पहाड़ियों पे मंदिर भी है। रमणीक नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त, देव तथा दानवों से वंदित और सर्व पर्वतों में उत्तम ऐसे विपुलाचल नाम के पर्वत के ऊपर। ये कौन से पर्वत पर दिव्य ध्वनि की रीति? तो पहले भी वहाँ समोचरण लगा था, विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर ने भव्य जीवों को अर्थ का उपदेश दिया, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा जीवादि पदार्थों और मोक्ष मार्ग आदि का उपदेश दिया। अर्थकर्ता यानी अर्थ का उपदेश, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थों का यानी छह द्रव्य नौ पदार्थ आदि संबंधी उपदेश दिया है, इसलिए उसको अर्थकर्ता कहते हैं। तीर्थंकर नाम भी ऐसे ही तैयार हुआ। तीर्थ है वो धर्मोपदेश को तीर्थ कहते हैं, उसके कर्ता जो है वो तीर्थकर्ता या तीर्थकर या तीर्थंकर। अब इस विषय में दो उपयोगी श्लोक है। उपयोगी श्लोक यानी अन्य उद्धृत किए उन्होंने, इसी संबंधी है वो विपुलाचल पर्वत संबंधी या जो पांच पहाड़ है उस संबंधी यहाँ बात बताते हैं। ऋषिगिरि रैन्द्राशायाम चतुरस्रो याम्य दिशि च वैभारः विपुलगिरिर्नैरोत्याम उभौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र। अभी इसका अर्थ नीचे देखेंगे। देखो, पूर्व दिशा में चौकोर आकार वाला ऋषिगिरि नाम का पर्वत है, उनके पर्वतों के नाम भी लिखे हैं और उसके आकार भी बताए। दक्षिण दिशा में वैभार और नैऋत्य दिशा में विपुलाचल नाम के पर्वत है। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकार वाले हैं। तीन पर्वतों की बात कोई, अभी अन्य दो पर्वतों के नाम देखेंगे हम, ऊपर पढ़ेंगे। धनुराकारश्चिन्नो वारुण वायव्य सौम्य दीक्षुत वृत्ताकृत्रिरैशान्यां पाण्डु सर्वे कुशाग्रवृताः। पश्चिम वायव्य और सौम्य दिशा में धनुष के आकार वाला फैला हुआ छिन्न नाम का पर्वत है। ईशान दिशा में वृत्ताकार पांडु नाम का पर्वत है। ये सब पर्वत कुश के अग्रभावों कौन से ढके हुए, कुश है ने वो घास गवत ग्रास। सौम्य पश्चिम वायव्य और दक्षिण ये उत्तर होगा सौम्य ने। यह क्षेत्र परिच्छेद समझना चाहिए। वृत्त है ना गोल, ईशान दिशा में वृत्ताकार पांडु नाम का पर्वत है और ये सब पर्वत जो हम कहते ना क्या ग्रास, अंग्रेजी ग्रास हरे भरे है। अब काल की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। कौन से काल में दिव्य ध्वनि खिरी थी उसकी बात करेंगे। इस अवसर्पणी कल्पकाल के दुष्मा सुषमा नाम के चौथे काल के पिछले भाग में, हाँ एक मिनट, ये इसी की गाथा है ना, पहले गाथा पढ़ेंगे हम 55 नंबर की, ये इसी नंबर पे 63 पेज पर ये। इमिसे वसपिनीये चहुत्त समयस्य पश्चिमे भाये चौतीस वास से किंचि विशेषुणे संते। आगे की भी करेंगे दो एक साथ अर्थ है। वासस्य परम मासे परमे पक्षम मिसावणे बहुले पाड़िवद पूव दिवसे तिथुपत्ति दुअभिजिम्मी। देखो इसका अर्थ कहेंगे, काल की अपेक्षा बात चल रही है। इस अवसर्पणी कल्पकाल के, कल्पकाल किसको कहते मालूम है? हाँ कितने बड़ा होता है कल्पकाल, एक कल्पकाल कितना बड़ा होता है? 20 कोड़ा को। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी मिलकर कल्पकाल कहलाता है और वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उसमें उत्सर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर और अवसर्पिणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अवसर्पिणी कल्पकाल यानी उतरता हुआ पहला दूसरा तीसरा ऐसे। दुष्मा सुषमा नाम के चौथे काल, चौथे काल के अंत में पिछले भाग में यानी टूअर्ड्स एंड, कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने पर वर्ष के प्रथम मास अर्थात श्रावण मास में प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष में। देखो अब यहाँ जो मराठी गुजराती है और हिंदी है इसमें ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी होती है। कैसी कॉन्ट्रोवर्सी? वो महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से मानते हैं हिंदी, हिंदी लोग। और यह जब यहाँ शास्त्रों में जो जो जहाँ बात होगी तो ये वैसी होगी, यानी जहाँ वे श्रावण कृष्ण कहते हैं वो हमारी अपेक्षा से आषाढ़ कृष्ण होगी। गुजराती मराठी हम तो ऐसे ही फॉलो करते हैं क्योंकि हम क्या है पहले शुक्ल पक्ष की पहली यानी प्रतिपदा कहते हैं, उसके बाद पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, फिर वो पहली से लेकर अमावस्या तक, अमावस्या का हमारा महीना एंड होता है। तो कहते वो अद्धामासी, वो अमावस्या यानी क्या है, अद्धामासी है, वो आधा महीना हुआ है, और पूर्णिमा यानी पूर्णमासी है तो महीना पूरा वहाँ हुआ है। तो ये पहले कृष्ण पक्ष आता है उनका, जब जब उनका और हमारा कैलेंडर देखेंगे तो कृष्ण पक्ष में हम पहले वाला महीना गिनेंगे और वो आगे वाला कहेंगे। अब यहाँ जो श्रावण कृष्ण की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारा आषाढ़ कृष्ण है, दोनों की बराबर, शुद्ध पक्ष दोनों की बराबर, क्योंकि हमारा आषाढ़ कृष्ण पक्ष है। अमावस्या होने के बाद हम क्या कहेंगे, अभी श्रावण शुक्ल एकम, और वो भी क्या कहेंगे, हमारा आधा श्रावण हो गया है, अभी हमारा श्रावण शुद्ध एकम है। यानी शुक्ल पक्ष में दोनों ही इक्वल हो गए, यानी दोनों का कहना सेम होगा। कृष्ण पक्ष में वो आगे वाले महीना कहेंगे और हम पहले वाला कहेंगे। नहीं समझे? श्रावण अभी यहाँ चल रही ना, महावीर भगवान उनकी दिव्य ध्वनि कब खीरी? हाँ निर्वाण कब हुआ? कब हुए? कौन सा महीना था? आषाढ़ था, अश्विन था कि कार्तिक था? हाँ अश्विन, अश्विन अमावस्या, और वो लोग क्या कहेंगे, कार्तिक अमावस्या। अभी इसकी बात छोड़ो, पूजा तो आप सबको मालूम है और उसमें हम नंदीश्वर की दीप की पूजा करते हैं अष्टानिका की, तो उसमें क्या कहते हैं, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत आठ दिन माहे, और अंत आठ कैसे हुए, अभी होली के पहले, होली पूर्णिमा है उसके पहले अष्टमी से हम होलाष्टक कहते ना, वो तो अंतिम दिन, अंत आठ दिन माहे, अंतिम आठ दिन यानी वो पूर्णिमा को अंतिम दिन कहा महीने का, ख्याल है ना ये उसका, नहीं तो ऐसा लगता है ये अंतिम दिन कैसे, पूर्णिमा को अंतिम दिन कैसे कहा, ये तो इसीलिए वो हमेशा कंट्रोवर्सी चलती है, ये तो कृष्ण पक्ष वो तो वे हमारा ही सच्चा है, क्योंकि आधा मासी और पूर्णमासी ये नाम ही बताते कि ये पहला है। तो हिंदी कैलेंडर देखिए आप, या ये सिद्धांत कोश वगैरह में तो यही कैलेंडर, ये इनका चलता है। अभी धवला में भी उसी अपेक्षा से लिखे उन्होंने। और मराठी गुजराती लोग तो ये अपने अलग मेथड है, हम शुक्ल पक्ष को पहला कहेंगे फर्स्ट हाफ, और कृष्ण पक्ष को सेकंड हाफ कहेंगे। दिन तो वही है, वद एकम ही, परंतु कौन सी वद लिखी वहाँ? श्रावण वद, श्रावण कृष्ण पक्ष लिखा ना, श्रावण वदी एक। हाँ तो अभी हमारी कौन सी होगी? आषाढ़ कृष्ण एक होगी हमारी। नहीं नहीं नहीं, याद है ना, गुजराती लोगों को याद होता है। हाँ नहीं नहीं, ये लोग उनका चलता है, मिति में तिथि में चलता है ना वो सब। हाँ अभी समझ में आया कि नहीं? हाँ कृष्ण पक्ष जब हिंदी भाषा कहेंगे तो हम, जब वो अगर श्रावण कहते तो हम एक महीना पहले वाले यानी आषाढ़ की बात करेंगे हम। देखो ये फिर पीछे से क्या क्या वदी कहते ना, वद्य यानी कृष्ण पक्ष, वद्य और शुक्ल ऐसा कहते गुजराती में, वदी कहते हैं ना, श्रावण वदी क्या, वद वद कहते हैं। अच्छा वद तो हम मराठी में या संस्कृत में वद्य कहते हैं, द्य और या कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण और शुक्ल। हाँ अब यहाँ कौन सी लिखा है, श्रावण मास में प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष, ये प्रथम पक्ष कहा ना उन्होंने, उसी का अर्थ कृष्ण को प्रथम कहा, तो ये हिंदी मेथड से अभी चलेंगे, इससे हमें क्लैरिटी हो जाती है। कृष्ण पक्ष को वो प्रथम पक्ष कहते हैं। आपको कृष्ण शुक्ल समझ में आता है कि पिना, फुल मून और वो क्या कहेंगे आप? सुद, सुद और बत। अच्छा सुद मालूम है? नहीं कई बात नहीं, वो चांद की कलाएं बढ़ती जाती है उसको शुक्ल कहेंगे या सुद कहेंगे, और पूर्णिमा के बाद वो क्रम से डिमिनिश होती है, अमावस्या का बिल्कुल नहीं, नो मून, तो वो हम कृष्ण पक्ष या वद कहेंगे उसको। तो प्रतिपदा के दिन, चलो अभी समझ में आ गया, हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय आकाश में अभिजीत नक्षत्र के उदित रहने पर, ये भी नक्षत्रों की बात है, कौन सा नक्षत्र उदय रूप होता है वगैरह वगैरह, उसकी मैं नहीं चाहिए। तीर्थ अर्थात धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई, यानी उस दिन दिव्य ध्वनि खीरी, उसके आगे वाला हम ऊपर पढ़ेंगे। प्रतिपदा ने एकम मराठी में पाड़वा भी कहते हैं, प्रतिपदा पाड़वा एकम या प्रथमा नहीं कहेंगे। चलो अब ये 57 तो हमने पढ़ा नहीं, ऊपर पढ़ेंगे। सावण बहुल परिवदे रुद्ध मुहूर्ते सुहोदय रविणो अभिजिस पड़म जोए एथ जुगाई मुणे यौवो। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन रुद्र मुहूर्त में सूर्य का शुभ उदय होने पर और अभिजीत नक्षत्र के प्रथम योग में जब युग की आदि हुई तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिए। युग की आदि भी आषाढ़ कृष्ण एक को होती है, तो वहाँ यह दिव्य ध्वनि भी उसी दिन की है। यह काल परिच्छेद हुआ। अब भाव की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। द्रव्य से महावीर भगवान का वर्णन देखा हमने, क्षेत्र से विपुलाचल पर्वत की बात की, काल से वो तिथि बताई उन्होंने, अब भाव की बात करते हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के निश्चय व्यवहार रूप विनाश कारणों की विशेषता से उत्पन्न हुए अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य तथा क्षायिक सम्यक्त्व दान लाभ भोग और उपभोग की निश्चय व्यवहार रूप प्राप्ति के अतिशय से प्राप्त हुई 9 केवल लब्धियों से परिणत भगवान महावीर ने भावशुद्ध का उपदेश दिया। अने भगवान महावीर ने भाव श्रुत का उपदेश दिया, ये बात हुई। वो कैसे है? नव लब्धियों से युक्त है। तो नव लब्धि ने नव क्षायिक लब्धि कहते, वो पंच लब्धि वाली पांच लब्धि वो नहीं, नव क्षायिक लब्धि यानी जो क्षायिक भाव है नव, उसी को नव क्षायिक लब्धि कहे। तो उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक, तो ये दान लाभ भोग हाँ वगैरह। तो ये उसमें निमित्त कौन है? तो ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का विनाश, अर्थात नीचे पड़ी निश्चय और व्यवहार से अभेद भेद रूप नौ लब्धियों से युक्त होकर भगवान महावीर ने भाव शुद्ध का उपदेश दिया। अभेद भेद रूप नौ लब्धियां ने क्या? भेद रूप नौ लब्धियां ने बाह्य में जो उनकी विभूति है उसको भेद रूप लब्धि भी कहते हैं। उनके ऐसे ना समोचरण की विभूतियां ऐसे ने? उनका इतना भोग है, उपभोग है, ऐसे बाह्य पुण्य के उदय को वहां भेद रूप लब्धि का। अभेद रूप लब्धियां ने उनके जो ज्ञान दर्शन है, अनंत वीर्य आदि जो गुण है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आदि भी गुण है, और उसमें उसका अनंत रूप से विकास हो गया है, क्षायिक भाव प्रकट हो गया है, वो उनकी अभेद लब्धि है। हाँ, संस्कृत ये आठ कर्म, मुझे भी स्ट्राइक हुआ कि आठ क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर है ना भाव तो निरूपित है, ज्ञानावरणादि, हाँ खाली ज्ञानावरणादि लिखा है, वो आठ निकाल देना चाहिए वहां। ज्ञानावरणादि कर्मों के लिखना, क्योंकि तीर्थंकर की बात चल रही है तो चार कर्म होंगे यहाँ, आठ खाली निकाल देना ज्ञानावरणादि कर्मों के। संस्कृत में इतना ही लिखा है, ज्ञानावरणादि निश्चय व्यवहार अपाय अतिशय जाता वगैरह वगैरह। कहाँ भी है? अब यहाँ 58 का पहले पढ़ के फिर अर्थ देखेंगे। दाने लाभे भोगे परिभोगे वीरिये सम्मत्ते णव केवल लद्धियो दंसन नाणम चरितेय। दान लाभ भोग परिभोग उपभोग कहो या परिभोग कहो, वीर्य सम्यक्त्व दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये नव केवल लब्धियां हैं। भोग और परिभोग में क्या अंतर है पिना पता है क्या? बताऊं? हाँ, जिसका जो वस्तु एक बार भोगी जाती है उसको भोग कहेंगे। हाँ, बारंबार जैसे वस्त्र है, गहने हैं, बार बार हम उसको यूज में लेते हैं तो उसको हम परिभोग कहेंगे। और भोजन है, एक बार खा लेते उसी चीज को दोबारा कैसे खाएंगे पेट में जाने के बाद, तो वो भोग हुआ। अब आगे, ये तो आसान है, इसमें कोई समझाने बात नहीं, उसमें कुछ शब्द या कुछ अर्थ नहीं समझता तो पूछ लेना। 59 खीणे दंसन मोहे चरित मोहे तहे वघाती तिये सम्मत्त वीर्यणाणं खय्याइं होंति केवलिनो। इसे आसान है अर्थ इसका, खीणे दंसन मोहे ने दंशन दर्शन मोह क्षीण होने पर क्षय होने पर, ऐसी बात है। देखो, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के क्षय हो जाने पर तथा शेष तीन घातिया कर्मों के क्षय हो जाने पर, एक साथ चारों का नाम क्यों नहीं लेना लिया? हाँ, नहीं नहीं चार घातिया कर्मों का क्षय हो जाने पर ऐसा कह सकते, ऐसा आधा आधा तोड़ तोड़ कर क्यों? दर्शन मोह के क्षय होने पर, चारित्र मोह के क्षय होने पर, तीन घातिया के क्षय होने पर। हाँ बोलो। हाँ, देखो जिसने दर्शन मोह का क्षय किया है वही तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, और उसके जब भी हाँ दसवें के अंत में कहो बारहवें में तो वो यानी चारित्र उसका क्षय यानी क्षायिक चारित्र प्रकट हो जाता है, और फिर बारहवें के अंत में तीन घातिया का क्षय होता है, इसलिए अलग अलग लिखा है। ऐसा होने पर केवली जिन के सम्यक्त्व वीर्य और दान ज्ञान ये क्षायिक भाव प्रकट होते हैं। अब यहाँ दर्शन नहीं लिखा है परंतु समझ लेना उसी में। अब 60 नंबर का। उपन्नमियणन्ते नठम यछादुमथियेणाणे नवविह पयत्थ गब्भा दिव्यज्झुणि कहे सुतट्ठम। देखो क्षायोपशमी ज्ञान के नष्ट हो जाने पर छादु मथिये नाने लिखा है ना, नठम्मी छादु मथिये नाने यानी क्षायोपशमी ज्ञान नष्ट होने पर क्या होता है, उपन्नम्मी अनंते यानी अनंत ज्ञान उत्पन्न होने पर। थोड़ा थोड़ा हम अर्थ के साथ पढ़ेंगे, आगे चलकर हमें उसमें से थोड़ा तो कुछ ख्याल आता है कि क्या गाथा में क्या कहते हैं। कि हमने किसी ने तो प्राकृत सीखी नहीं है तो नीचे के अर्थ के साथ लगाएंगे, आपको तो बहुत कुछ मालूम है। हाँ अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। ये तो ट्रिक से ही जानेंगे ना इसे। तो क्षयोपशमी ज्ञान के नष्ट हो जाने पर और अनंत रूप केवल ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर नव विह पयत्थ गब्भा यानी नव पदार्थ प्रकार के पदार्थों से गर्भित ऐसी दिव्य ध्वनि। कौन से नव पदार्थों की दिव्य ध्वनि में? हाँ, सात तत्व और पुण्य पाप मिलकर नव पदार्थ, तत्वों की भाषा में सात तत्व कहते हैं। उन्हीं को, उन्हीं तत्वों को पदार्थ पदार्थ कहते हैं, जीव पदार्थ अजीव पदार्थ ऐसा नाम देंगे, पुण्य और पाप पदार्थ उसमें जोड़ देंगे तो नव पदार्थ हो गए। तो इन नौ प्रकार के पदार्थों से गर्भित यानी दिव्य ध्वनि में इन पदार्थों संबंधी विशद व्याख्यान है, इसलिए दिव्य ध्वनि को ही नौ पदार्थों से युक्त कहेंगे, गर्भित कहेंगे। सूत्रार्थ का प्रतिपादन करती है अर्थात केवल ज्ञान हो जाने पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। इस प्रकार भगवान महावीर अर्थ करता है, ये ग्रंथ के कर्ता की बात चल रही है हमारी, भूल नहीं जाना, उसमें से अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता इसी बात चलेगी। इस प्रकार केवल ज्ञान से विभूषित उन भगवान महावीर के द्वारा कहे गए अर्थ को उसी काल में और उसी क्षेत्र में क्षयोपशम विशेष से उत्पन्न हुए चार प्रकार के निर्मल ज्ञान से युक्त, अब ये गौतम गंधर्व की बात चल रही है, वर्ण से ब्राह्मण गौतम गोत्री संपूर्ण दुश्रुति में पारंगत। क्या कहा बिना, कैसे थे गौतम? संपूर्ण दुश्रुति यानी कुशास्त्रों में पारंगत वैद्य। हाँ हाँ, टोटल वैदिक में तो एकदम उच्च कोटि के थे ना मास्टर, एकदम टॉप मोस्ट थे। तो संपूर्ण दुश्रुति में पारंगत और जीव अजीव विषयक संदेह को दूर करने के लिए, परंतु जीव अजीव संबंधित तो संदेह था, दुश्रुति में पारंगत थे और सच्चा ज्ञान तो था नहीं, तो संदेह को दूर करने के लिए, ये तो एक कथा सबको मालूम है कि महावीर की ऐसा नियम है कि केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि खिरती है, परंतु इनकी तो 66 समोचरण तो लगता गया रोज के रोज, परंतु दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो फिर इंद्र ने विचार किया, अवधि ध्यान लगाया तो पता चला कि ऐसा कोई पात्र जीव यहाँ नहीं है, ऐसे होते कि वो पात्र की उपस्थिति में ही दिव्य ध्वनि खिरती है। तो विचार किया तो उसको ख्याल में आया, तो अवधि ज्ञान है तो आगे की बात भी जानेगा, तो ये इंद्रभूति के पास गया। इंद्रभूति वायुभूति और अग्निभूति तीन थे और अपने अपने उनके 500 शिष्य थे और उनके टॉप मोस्ट वो वहां के जैसे वो पदाधीश या पट्टाधीश जो कुछ थे। तो इसको जाके प्रश्न पूछा, ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय क्या होता है? तो किसने पूछा? तो मेरे गुरु को शंका है। अच्छा, मैं तुझसे बात नहीं करूँ, मैं तेरे गुरु से बात करूँगा, क्योंकि वो तो अपना वो जानता नहीं था, इसलिए मैं कुछ जानता नहीं हूँ ये बात तो उसको अंदर से पता चली। और फिर आने वाले शिष्य ने, मैं तुझसे नहीं बात करूँगा, तेरे शिष्य से, ये तेरे गुरु से बात करूँगा। तो वहाँ आए, वो आते ही वो देखा, मानस समय देखा वगैरह, आगे की बात अभी आएगी। उनके पाद मिल में अवतरित हुए उसके पहले उन्होंने दीक्षा भी धारण की थी, ख्याल है? मानस स्तंभ देखते ही उनका मत गल गया, पूर्व भोग की उनके देशना की स्मृति हो गई, उन्होंने दीक्षा भी अंगीकार की और तब उनको चार ज्ञान के धारी हो गए और जहाँ पहुंचे, परंतु पहले वो दुश्रुति में पारंगत थे। हाँ
हेलो, आप जो कह रहे हैं तो वो क्रम से नहीं लेना, कभी आगे की बात किए, कभी पीछे, भविष्य की मतलब वर्तमान की बात किए, कभी भूतकाल की बात की,
ये संपूर्ण दृष्टि में पूर्व की बात है उनके। हाँ, ऐसा लेना
जैसा, और जैसा हम कहते हैं तीर्थ।
हाँ,
इनका ऐसा कहना है कि वो दुश्रुति में पारंगत थे जब मुनि भी नहीं थे, तो उनको चार ज्ञान के धारी कैसा कहा गया?
दोनों कैसे हो सकता है,
चार ज्ञान के धारी ऐसा कैसा कह सकते हैं?
जैसे हमने अभी नए निक्षेप देखे, वो लगा नहीं ना अभी, कौन से निक्षेप से कौन से नए से बात है वो, ये तो पूर्व की अपेक्षा से भी बताएं।
नहीं, कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं ना, आदिनाथ तीर्थंकर ने दो शादियां की थी, लेकिन तीर्थंकर कभी शादी करते ही नहीं, वो राजा जो आदिनाथ था, ऋषभदेव, राजा ऋषभ था उन्होंने, अब कहते आदिनाथ तीर्थंकर 6 महीने तक तो आहार ही नहीं मिला, ये तीर्थंकर की बात कह रहे हैं, लेकिन वो समझ लेना कि वो पूर्व भूमिका में जो थे तो पूर्व भूमिका में दुश्रुति से युक्त थे।
कहाँ पर
इनका ऐसा प्रश्न है, केवली के सम्यक्त्व में और क्षायिक सम्यक्त्व में क्या अंतर है?
कहाँ अंतर लिखा उन्होंने? 59 केवली जिनके, यानी केवली जिनको, हमारी हिंदी में
केवली भगवान को,
केवली भगवान को वो तो पहले से हुए ही है,
वो
ये नया प्रकट होने की बात नहीं, उनको ये अभी है विद्यमान, ऐसा सम्यक तो अभी नया कुछ प्रकट नहीं होता है, शायिक सम्यक तो ऑलरेडी उनके पास था ही।
59
वो दर्शन मोहनी के क्षय होने पर, चारित्र मोहनी के क्षय होने पर ये पहले हुआ है, उसकी अपेक्षा यहाँ उनके क्षायिक सम्यक तो प्रकट होता है ऐसा लिखा, यानी क्षायिक सम्यक तो जिसको प्रकट हुआ है वही तो आगे चलकर केवली हुआ है, श्रेणी चढ़कर उसने क्षायिक चारित्र प्रकट किया, 3 घातिया कर्मों का नाश किया, तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य भी प्रकट हुआ। ये क्रम लगा लेना अभी हम, क्योंकि हमें पता है ना कहाँ क्या होता है। ऐसे इंद्रभूति ने उदाहरण किया, ये ग्रंथकर्ता की बात हुई है, अर्थकर्ता महावीर भगवान है, उन्होंने जो उपदेश दिया दिव्यध्वनि खीरी, तो ये इंद्रभूति ने उसको अवधारण किया, यानी उसको ग्रहण किया, उसने जाना। 61 नंबर की गाथा पढ़ेंगे अभी। गोतेन गोदमो विपो चाउवेय सडंगवी नामेन इंद्रभूदितिसिलवं ब्रह्मणुत्तमो। उसका ही कौन सा गोत्र वगैरह वो बताते हैं, गौतम गोत्री विप्रवर्णी, विप्र का अर्थ मालूम है? ब्राह्मण, ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। वर्ण यानी ये चार वर्ण की तभी पहले से चले आए थे ना, कौन कौन से, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण, उसमें विप्रवर्णीय ने ब्राह्मण वर्ण, ये वर्ण अलग बात है और जो धर्म है ना जिसको संप्रदाय कहते हैं वो अलग है। उनका वर्ण तो ब्राह्मण था और उनकी मान्यता कैसी थी, वैदिक धर्मी था, यानी ब्राह्मण और वैदिक इसमें लोग कंफ्यूजन करते हैं, हम ब्राह्मण हमारा धर्म है ऐसा मानते हैं, हम जैनी है और हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो वर्ण होता है, जैनी तो क्षत्रिय भी हो सकता है, जैनी तो ब्राह्मण भी हो सकता है, जैनी तो वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी जैन हो सकता है, शूद्र भी सम्यक भी सम्यक तो धारण कर सकता है, और अमुक प्रकार के शूद्र तो मुनि अवस्था है, और कौन से जाएंगे उसकी बात आएगी अभी, ख्याल आता है ना, ये वर्ण अलग बात है, वर्ण कैसे पहले व्यवसाय की अपेक्षा उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया था। हाँ, शूद्र का, हाँ नीच गोत्री वाले उनका जो काम जो व्यवसाय जो होता है, हाँ पहले तो चमार चांडाल ये सारे वो निज शूद्र वाले कहलाते। देखो गोत्रम गौतम गोत्री विप्रवर्णी चारों वेद और षडंग विद्या का पारगामी। कौन से चार वेद थे पारगामी वाले? हाँ भाई मालूम है, चार वेद के नाम मालूम है कि नहीं? अरे प्रथमान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग, ये चार वेद हैं। चार वेद और षडंग विद्या का पारगामी, शीलवान और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है ऐसा। षड अंग विद्या, अभी कौन सी विद्या पता नहीं, कौन सी षडंग विद्या है। ये इसके लिए भी, अनुयोग के लिए भी वेद शब्द आता है। हम कहीं गए थे ना, कहा किसी ने पूछा शास्त्र में तो तीन वेद बताए हैं और यहाँ चार वेद कहाँ से आए? हमने बोले ये चार अनुयोग को चार वेद कहते हैं। क्योंकि क्या है, अन्य मति में भी वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वो आते हैं ना, तो हमें वही याद वेद आते हैं। हाँ तो ये ऐसा वर्धमान स्वामी का प्रथम गंधर्व इंद्रभूति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये बात हो गई। अब नीचे हम कहेंगे अनंतर, यानी पहले में पहले अर्थ करता है महावीर स्वामी, उनका उपदेश का ग्रहण करने वाले सर्वप्रथम इंद्रभूति गौतम। अनंतर भावश्रुत रूप पर्याय से परिणत उस इंद्रभूति ने, देखो अकेला शास्त्र सुना और दूसरे को सुनाया ऐसी नहीं बात है, बीच में क्या है, भावश्रुत रूप से परिणत यानी उस पूरी विद्या को आत्मसात किया, ये भावश्रुत से परिणत हुआ। उस इंद्रभूति ने 12 अंग और 14 पूर्व रूप ग्रंथों की एक ही मुहूर्त में क्रम से रचना की। वो इतना विशाल है वो, अगर हम अंग और पूर्व, हम तो अक्षरों की संख्या देखते थे तो हम कैसे ऐसा हो जाता है, पसीना छूटता है। तो ये अंग और पूर्व कितने विशाल रचनाएं हैं ये, और एक मुहूर्त में, मुहूर्त कितना बड़ा होता है? हाँ 48 मिनट, वो एक मुहूर्त हुआ, एक यानी 48 मिनट में इतनी सारी रचना की क्रम से सब पूरी। अतः भले प्रिंटिंग किया नहीं, मन में जो उसकी रचना तो की नहीं उन्हें, अक्षर रूप उसको यानी वो बुद्धि द्वारा ही उन्होंने रचना की, परंतु उसको शब्द की रचना की ना, शब्द फॉर्म दिया उनको, क्या ना। देखो ये सारे मन से तो बातें पहले होती थी, जो जो हम मन से करते हैं, अभी कंटाला आया, अभी बाहर का मन तैयार किया एक द्रव्य, क्या कंप्यूटर, पहले हम कैलकुलेशंस मन में ही करते थे, फास्ट फास्ट करते थे, अभी ऐसे से बटन दबाए बिना कुछ समझता नहीं है, कितना गिरे तो उसमें पटपट करें तो उत्तर आता है अपने बुद्धि, क्योंकि हम उसमें डिपेंड हो गए ज़्यादा। हमने क्या सोचा, नई तरक्की कर ली, पहले लोग नहीं जानते थे और अब हमने कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जो कार्य होता था पहले मन के द्वारा चलता था, बुद्धि द्वारा चलता था, इतना सारा उसका जो कुछ क्लासिफिकेशन है, उसका जो कुछ स्टोर है, उसका जो कुछ मेमोरी में है, या उसका एक दूसरे से जो एप्लीकेशन है, वो सब मन के द्वारा होता था, और अभी सब ये मशीन के द्वारा करते, तो मशीन आ गया तो हम रिलैक्स, चलो अपनी बुद्धि का अभी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। पहले तो हम कुछ भी शास्त्र की बात होती तो पहले लिख लेते, क्योंकि इतना पहले से इतनी पूजा वगैरह पूरे हिंदुस्तान भर के लोग गाते थे, या छोड़ाला वगैरह जैसे ग्रंथ पूरे हिंदुस्तान में कैसे लोकप्रिय हो गए, तभी तो कोई छपाई भी अपाई इतनी नहीं थी, फिर भी जिसको अच्छा लगा चलो लिख लिया, पूजा ऐसी एक से दूसरे, दूसरे की तीसरे तरफ, और वो हम लिख कर वो फिर याद कर लेते थे और ये हो जाता था। अभी हाथ में जीरोक्स आ जाती है, पढ़ लेते रख देते, उसके एक भी लाइन अपने बुद्धि में नहीं घुसती है, यानी जितना इजी मिल गया है उसका उतने महत्व भी कम हो गए, वैल्यू भी कम हो गई, और हम फिर कोशिश नहीं करते उसको याद में रखने की। पहले तो ये सारे ही ग्रंथ, अभी गणधर ने तो बताए, सभी आचार्यों को ये कंठस्थ होते थे, याद होते थे हजारों के, तो एक मुहूर्त में रचना की, अतः भावश्रुत और अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर है, क्योंकि मूल कर्ता की बात है नहीं। तथा तीर्थंकर के निमित्त से गौतम गणधर श्रुत पर्याय से परिणत हुए, यानी उन्होंने वो सब जाना, श्रुत पर्याय से परिणत होना यानी उन्होंने जाना, इसलिए द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम गणधर है, यानी जानकर उन्होंने रचना की, शब्दों की रचना की, इसको उसको शब्द फॉर्म दिया ना उन्होंने, तो इसलिए द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम है। इस तरह गौतम गणधर से ग्रंथ रचना हुई, तीर्थंकर को अर्थकर्ता कहा और गौतम गणधर को ग्रंथकर्ता। उन गौतम गणधर ने भी दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान लोहार्य को दिया, दोनों प्रकार के भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत लोहार्य को, लोहार्य नाम के जो कोई आचार्य हो गए उनको दिया। लोहार्य ने भी जम्बू स्वामी को दिया, यानी ये क्रम से परिपाटी, यानी शिष्यों की परंपरा अगर देखेंगे तो गणधर फिर लोहार्य फिर जम्बू स्वामी, परिपाटी क्रम से, परिपाटी क्रम यानी आगे आगे को देना। ये तीनों ही सकल श्रुत के धारण करने वाले कहे गए हैं, और यदि परिपाटी क्रम की अपेक्षा न की जाए, यानी वो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिया तो एट अ टाइम कितने लोगों ने जाना, तो उस समय संख्यात हजार सकल श्रुत के धारी हुए, यानी हजारों, संख्यात हजार का अर्थ क्या होता है, हजारों सकल श्रुत के यानी 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता तप थे, हजारों आचार्य को या मुनि। अब आगे कहते हैं, हाँ 12वें अंग में ही, हाँ 12 अंग और 14 पूर्व लिखने का ऐसा है कि 12वें अंग में और भी कुछ होते हैं, परंतु आगे चलकर बात आएगी कि 11 अंग और फिर 14 पूर्व का ज्ञान नहीं रहा, किसी को 10 पूर्व तक का ही रह गया, 11 अंग और 10 पूर्व का रह गया, किसी को 11 अंग में और कुछ कम पूर्व रह गए, या किसी को 11 अंगों का ज्ञान नहीं रहा, किसी एक ही अंग का ज्ञान रहा, तो कितना ज्ञान आगे आगे बताने के लिए वो 11 अंग और उसमें से पूर्वों में फिर भेद करते, 14 पूर्वी वाले या 10 पूर्व वाले, एक पूर्व वाले, ऐसा विभाग है। 12वें अंग के 5 भेद है, उसमें प्रथमानुयोग, परिक्रम, वो चूलिका, ये पूर्व, हाँ ऐसे भेद है, और कौन सा सूत्र, हाँ सूत्र, ये 5 मेन भेद है उसके, उसमें से 14 पूर्व एक भेद में आते हैं, यानी ये 12 अंगों में ही वो पूर्व आ गए, और फिर जो कुछ थोड़े शब्द अक्षर बच गए उसमें से 14 प्रकीर्णकों की अंग बाह्य उसको कहते हैं, जब भी अपना ज्ञान का विषय चलेगा उसमें ये बातें आएगी। अब उसके बाद आगे देखते हैं 67 पेज पर, गौतम स्थविर, स्थविर यानी वो मुनि को स्थविर कहते हैं, गणधर है ना, आपने शायद सुना वह स्थविर कल्पी और जिन कल्पी, ऐसे दो भेद आते हैं मुनियों के, जिन कल्पी यानी जो स्वतंत्र अकेले रहते हैं वो जिन कल्पी, जैसे जिनेन्द्र भगवान संघ में नहीं रहते, मुनि दीक्षा ली वो अकेले विचरते हैं उसको जिन कल्पी कहते हैं, और स्थविर कल्पी यानी मुनि संघ होता है वो संघ में रहने वाले, वो आचार्य ने गौतम आचार्य थे, तो गौतम स्थविर, लोहाचार्य और जम्बू स्वामी, ये तीनों ही अभी जो हमने देखे ना वो क्रम से आगे आगे की चले परिपाटी से, 7 प्रकार की रिद्धियों से युक्त थे, यानी तीनों को ही 7ों ही रिद्धियां प्राप्त थी, और कैसे थी, सकल श्रुत रूपी सागर के पारगामी होकर, पारगामी यानी उसको जानकर, सागर के पारगामी यानी सागर के उस पार जाने वाले, सागर को कॉन्कर करने वाले या उसको पार करने वाले, अभी यह कौन सा सागर है, तो सकल श्रुत रूपी यानी संपूर्ण श्रुत जो द्वादशांग श्रुत कहलाता है उसके पारगामी होकर यानी उसके वो जानकार होकर अंत में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर निर्वाण को प्राप्त हुए, यानी गौतम गंधर्व भी निर्वाण को प्राप्त हुए, उनके पश्चात लोहाचार्य और उनके पश्चात जम्बू स्वामी, ये परिपाटी वाले लिए। अब ये ऊपर एक बात आई, 7 प्रकार की रिद्धियों से युक्त, हाँ मालूम है 7 रिद्धि कौन सी है, वो अनिमा वो तो देवों की वो विषय देवों का जो हाँ 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 बुद्धि रिद्धि एक होती है क्रिया रिद्धि होती है फिर तप रिद्धि होती है बल औषध है क्षेत्र है ये उसको कहते हैं रिद्धियाँ उनके तप विशेष से उनको ऐसी विशेष बातें प्राप्त तो हो जाती है उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। अन्य अन्य जो जैसे आकाश में गमन करने की रिद्धि होती है उनको चारण रिद्धि भी कहते हैं ना तो चारण रिद्धिया ने वो कहीं पर अन्य क्षेत्र में विहार करके ने उनको जमीन पर चलना नहीं पड़ता आकाश में ऐसे ही वो अधर चल सकते। देखो सात रिद्धि है पहली तो बुद्धि रिद्धि फिर क्रिया में ही दो प्रकार लिए क्रिया और विक्रिया क्रिया में आकाशगामिनी और चारण रिद्धि ऐसे दो भेद होते हैं और विक्रिया भी ये बुद्धि रिद्धि भी 18 प्रकार की होती है 64 प्रकार की टोटल रिद्धियां हैं तो बुद्धि रिद्धि 18 अभी उसके भेदों में नहीं जाएंगे हम हाँ वो आते हैं तत्वार सूत्र में विक्रिया में और विक्रिया में क्रिया में हाँ 9 और 11 20 उसमें तपोरिद्धि 7 प्रकार की है बल प्रकार यानी 3 काय बल मनोबल वचन बल ये बल रिद्धि 3 प्रकार की औषध रुद्धि 8 प्रकार की है रस रिद्धि 6 प्रकार की है 6 रस कहते हैं ना षटरस और क्षेत्र रिद्धि 2 प्रकार की है ये ऐसे 7 प्रकार की जो रिद्धि है उनसे वे वियुक्त होते हैं। अब ये जो 3 हो गए 3 तो अनुक्रम से हुए गौतम फिर लोहाचार्य और फिर जम्बूस्वामी उसके बाद विष्णु नंदीमित्र अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से परिपाटी क्रम में उसके एक के शिष्य दूसरे दूसरे के तीसरे तीसरे के चौथे ऐसे वो परिपाटी कहते हैं उसको हाँ क्रम से यानी एट अ टाइम नहीं हुए है एक के बाद एक हुए हैं तो ये भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से 14 पूर्व के धारी हुए 14 पूर्व जब कहेंगे तो यानी द्वादशांग के पूर्ण ज्ञाता थे ऐसा लेना उसमें ये शॉर्ट में कहने की पद्धति 14 पूर्व हाँ 12 अंग आगे यानी 12वें अंग में तो बाकी तो प्रथमान योग वगैरह तो साधारण है मेन चीज उसमें तो 14 पूर्व की है इसलिए 14वें पूर्व की अपेक्षा बात करेंगे आगे आगे 14 पूर्व का ज्ञान नहीं रह गया फिर किसी को 10 पूर्व का रहेगा तो आगे बात करेंगे यानी जो जब कहेंगे 10 पूर्व का ज्ञान है तो उसमें 11 अंग और 10 पूर्व ऐसा समझना आगे आगे के पूर्व उसमें कह पूर्व बताएंगे परंतु उसके पहले के अंग उसमें है ऐसा समझ लेना तो 14 पूर्व के हुए। अब उसके बाद तदनंतर विशाखाचार्य प्रोष्ठिल क्षत्रिय जयाचार्य नागाचार्य सिद्धार्थ स्थविर धृतिसेन विजयाचार्य बुद्धिल्ल गंगदेव और धर्मसेन ये 11 ही महापुरुष परिपाटी क्रम से 11 अंग अभी 11 अंग के ज्ञाता थे और कितने पूर्व के ज्ञाता थे उत्पाद पूर्व आदि 10 पूर्वों के धारक पहले 14 पूर्व के धारक कहे थे अब यहाँ 10 पूर्व के धारक तथा शेष उपरिम 4 पूर्वों के एक देश के धारक हुए इसका अर्थ क्या है देखो 10 पूर्व का तो पूरा ज्ञान था और रिमेनिंग 4 पूर्व का एक देश यानी पार्शल ज्ञान था ये इसको कहते शेष उपरिम पूर्वों के एक देश के धारक यानी रिमेनिंग 4 पूर्वों के पार्शल ज्ञाता धारक यानी उसको जानने वाले धारण करने वाले। अब इसके बाद नक्षत्राचार्य जयपाल पांडुस्वामी ध्रुवसेन कंसाचार्य ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से संपूर्ण 11 अंगों के और 14 पूर्वों के एक देश के धारक हुए क्या ये तो अंगों और पूर्वों सबको लिया परंतु सबके एक देश धारक पार्षद यानी किसी भी अंग का पूर्ण ज्ञान नहीं परंतु सभी अंगों में से थोड़ा थोड़ा जानते थे यानी सभी अंग और सभी पूर्वों में से थोड़ा थोड़ा जानते थे ख्याल है ना संपूर्ण 11 अंगों के, अच्छा यानी 11 अंगों के तो पूर्ण, हाँ ठीक ठीक, ये वैसे होता है। ऊपर कैसे लिखा है 11 अंगों के और 10 पूर्वों के, वैसे यहाँ 11 अंगों के ज्ञाता है, हाँ संपूर्ण, और 14 पूर्वों का एक देश ज्ञान है, बराबर। तदनंतर सुभद्रा, यशोभद्रा, यशोभाऊ और लोहार्य, ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचार अंग के धारक, अभी एक अंग के पूर्ण धारक कहा, पहला जो आचार अंग है 12 अंगों में से सबके पहले, जो पहले में पहला अंग है उसका नाम है आचार अंग, तो उसके तो संपूर्ण धारक, और शेष अंग यानी रिमेनिंग 11 यानी दूसरा तीसरा ऐसे 12वें तक के, तथा पूर्वों के एक देश धारक हुए, यानी आचार अंग का पूर्ण ज्ञान और रिमेनिंग अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान। इसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश, अब यहाँ वो सभी अंग और पूर्वों का एक देश लेना, हाँ सभी अंगों का एक देश और सभी पूर्वों का एक देश, आचार्य परंपरा से आता हुआ धर्सेन आचार्य को प्राप्त हुआ, यानी जब तक धर्सेन आचार्य उनका काल आ गया था तब तक सभी यानी द्वादशांगों का एक देश ज्ञान ही बाकी रहा था, किसी भी अंग या पूर्व का पूर्ण ज्ञान नहीं उपलब्ध था।
देखो ये महावीर भगवान के बाद कुछ ही काल में ये अवस्था हुई कि लोगों के पूरे 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान तक नहीं रहा, एक अंग का ज्ञान रहा दर्शन आचार्य के टाइम में।
नहीं नहीं एक अंग भी नहीं, एक अंग का भी
एक देश,
हाँ, सभी अंगों का एक देश,
सभी अंगों का एक देश और ऐसा उनको ज्ञान रहा। तो उसके बाद आज अपनी क्या अवस्था है, हमें कितने श्लोक याद है, ये क्या बताता है, काल की अपेक्षा से कथन हो करेंगे तो काल की महिमा ऐसी है अवसर्पणी काल कि ज्ञान की हीनता हो रही है। और कई तो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास पूरे ओरिजिनल ग्रंथ है 47 या 48 जो भी होंगे, यानी कितनी बड़ी भ्रमणा है, हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, हम भी कहते हैं हाँ ठीक है बराबर है आपका ठीक है और उसको पूज्य मानते हैं। और अपने यहाँ तो ऐसा कहा है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का जब तक हमें अवभाषण नहीं होता है, सही स्वरूप नहीं समझता है, तो सम्यक्त्व के भी हम काबिल नहीं है। कल ही बात आई थी ना, ये जो वस्तु स्वरूप है वो बता रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे, ऐसा आया था ना कल, यानी लोगों को भ्रमित कराने की बहुत चांसेस होते हैं उसमें। ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसी बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाकी देखो पहले तो 500 धनुष के ऊंचे थे, इतने बलशाली शरीर के अवधारी थे, अब क्या रह गया हमारे पास, ये हम नीचे गिरते आए ना हरेक तरफ से।
तो ये एक देश परंपरा, ये सब सभी अंगों पुरों का एक देश दर्शन आचार्य को प्राप्त था, और तभी उनके ख्याल में आए तो आगे चलकर ये भी इसका रास होने वाला है क्रम से। अभी भी हम देखते हैं ना किसको फुर्सत है पढ़ने की, गिने चुने हम कुछ पढ़ते हैं, ऐसा लगता है क्या वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे लोग, अभी भी कहने वाले बहुत है। ये नहीं जिसको तत्व की रुचि है ये तो द्रव्यानुयोग पढ़ना, समय सार प्रवचन सार प्रवचन सार भी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, समय सार पढ़ लिया चलो हो गया अपना कल्याण, त्रिकाली में न्यायिक ध्रुव भगवान आत्मा हूँ बस हो गया, इसकी क्या जरूरत है, इसके बिना भी होता है, ऐसे सभाओं में भी कहने वाले कितने वहां आ गए। तो ये तो सभी ओर से अगर यानी जिसको ये व्यवहार यानी संयोगों की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, शरीरों की अपेक्षा, कषायों की अपेक्षा जीव का वर्णन है जिसको हम व्यवहार ने का विषय कहते हैं, परंतु जिसका ये ज्ञान सच्चा नहीं है उसको तो निश्चय प्रकट ही नहीं होगा, ख्याल है ना, संयोगों का ज्ञान जिसका ठीक नहीं है, संयोग में नहीं हुई है तो मेन बात है, परंतु उसका अगर अपनी बुद्धि में उसका निषेध होगा, ये जानने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी तीरियंचों को भी हो जाता है, परंतु हम यदि उसको अपने बुद्धि में उसका निषेध वर्तता है ये क्या फालतू है ऐसा, तो उसको जिनवानी प्रति निषेध है। ये बात अलग है कि बुद्धि अपनी कम है या हम जान नहीं सकते या हमें अफसोस है कि अभी हमको ऐसा टाइम नहीं है, वो बात अलग है, ख्याल है। हाँ, क्योंकि व्यवहार शास्त्र जहाँ होते हैं द्रव्यानियों की इसको पता नहीं है, निमित्त उपादान या निश्चय व्यवहार की जिसको पता नहीं है, उसमें से कैसा अर्थ निकालना चाहिए किसी भी सेंटेंस में से, वो तो इसका उल्टा ही अर्थ लगाए, क्योंकि ये व्यवहार यानी निमित्त की भाषा में लिखे हुए ग्रंथ है, इसको व्यवहार ग्रंथ कहते हैं। तत्वार सूत्र में भी ऐसा है, जीवों के भेद करेंगे एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय, और फिर समय सार में अरे जीवों की इंद्रिया होती नहीं, तो ऐसा अरे ये क्या दो गड़बड़ क्या चल रही है, ऐसा है ना। तो ये हमें जानना चाहिए अर्थ, यहाँ जो वाक्य है उसके पीछे का रहस्य हमें उसमें से निकालना चाहिए। अब ये स्टोरी बताएंगे क्या हुआ था, दर्शन आचार्य तक आ गए हम, अभी इसको तो पढ़ेंगे, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं, आगे पढ़ते। सौराष्ट्र ने गुजरात काठियावाड़ देश के गिरिनगर नाम के नगर की चंद्र गुफा में रहने वाले अष्टांग महानिमित्त के पारगामी, ये जी निमित्त ज्ञान कहते हैं, आठ प्रकार से होता है वो, उसको अष्टांग निमित्त ज्ञान कहते हैं, उसके वो एक्सपर्ट थे, पारगामी थे, ज्ञाता थे, प्रवचन वत्सल, और आगे अंग श्रुत का विच्छेद हो जाएगा इस प्रकार उत्पन्न हो गया है भय जिनको, ऐसे उस धनसेनाचार्य ने महामहिमा अर्थात पंचवर्षीय साधु सम्मेलन में सम्मिलित हुए दक्षिणापथ के दक्षिण देश के निवासी आचार्यों के पास एक लेख भेजा। यहाँ कोई वहाँ साधुओं का सम्मेलन कुछ था, वहाँ सभी आचार्य इकट्ठे उपस्थित होने वाले थे, तो वहाँ उन्होंने एक पत्र भेजा। लेख में लिखे गए दर्शनाचार्य के वचनों को भली भांति समझकर उन आचार्यों ने शास्त्र के अर्थ को ग्रहण और धारण करने में समर्थ नाना प्रकार की उज्जवल और निर्मल विनय से विभूषित अंग वाले क्या कहते हैं। अब वो खत पढ़कर आचार्यों की समझ में आ गया उनका किस लिए उन्होंने अन्य आचार्यों को या मुनियों को बुलाया है, तो उनमें से जो योग्य शिष्य थे, योग्य जो मुनि थे कि जो शास्त्र उनसे सीखे, खाली सीखे नहीं, वो बुद्धि में ले ले, उस पर विचार करे और यथार्थ रीति से उसकी ग्रंथों की रचना करे, तो भली भांति समझ कर उन आचार्यों ने शास्त्र के अर्थ को ग्रहण और धारण करने में समर्थ। अब ये सब ये बुद्ध बलि और पुष्पदंत के विशेषण अभी यहाँ से आगे समझना। नाना प्रकार की उज्जवल और निर्मल विनय से विभूषित अंग वाले यानी उज्जवल और विनयवान थे, शील रूपी माला के धारक, गुरुओं द्वारा प्रेषण रूपी यानी भेजने रूपी भोजन से तृप्त हुए यानी गुरुओं ने उनको भेजा वहां, उसमें वो महासमाधानी हो गए। देश कुल और जाति से शुद्ध अर्थात उत्तम देश, उत्तम कुल और उत्तम जाति में उत्पन्न हुए, समस्त कलाओं में पारंगत और तीन बार पूछा है आचार्यों से जिन्होंने, इसका अर्थ क्या है, तीन तीन बार अपने आचार्यों की आज्ञा लेकर वे वहां से चले गए, ये वो उनका विनय बताता है, अपना संग छोड़कर अन्यत्र जाना है और उनके आचार्यों ने आज्ञा दी कि आप वहां चले जाना, तो फिर भी जाने के पहले लिखा ना आचार्यों से तीन बार आज्ञा लेकर ऐसे दो
आपका कंप्यूटर भी दो बार आज्ञा देगा जब सुनता है बंद करने का होगा तो बंद करने का है हरीश्वर
ऐसे दो साधुओं को आंध्र देश में बहने वाली वेणा नदी के तट से भेजा, यानी वो साधु का सम्मेलन वो वेणा नदी के तट पे वहाँ कहीं हुआ था आंध्र में, और वहाँ से कहाँ चले गए वे, आंध्र से निकलकर प्लेन से गए होंगे ये तो पैदल विहार होता है मुनियों का ख्याल है ना। मार्ग में उन दोनों साधुओं के आते समय जो कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान सफेद वर्ण वाले हैं, देखो ये अभी किसका वर्ण चलेगा, कि जब वहां से वे निकले तब धर्सेन आचार्य को सपना आया, स्वप्न में उन्होंने क्या देखा उसकी बात अभी बता रहे, कि ये सफेद वर्ण वाले कौन है तो ये बैल है ऐसा कहेंगे। सपने में बैल आए थे तो उसका वर्णन भी आया है। देखो मार्ग में उन दोनों साधुओं के आते समय, यानी जब वो साधु मार्ग में से आ रहे थे, तब जो कुंद के पुष्प, ये सफेद होता है कुंद पुष्प, जैसे जाई जुई मोगरा था ना, वैसे कुंद पुष्प होता है, वो सफेद कलर का होता है। चंद्रमा और शंख के समान सफेद वर्ण वाले जो समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है, जिन्होंने आचार्य धरसेन की 3 प्रदक्षिणा दी है और जिनके अंग नम्रित होकर आचार्य के चरणों में पड़ गए हैं, ऐसे 2 बैलों को धरसेन भट्टारक ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में देखा। मुनियों को तो नींद रात्रि के पिछले भाग में होती है और किछु अल्प होती है, और उसने में उनके सपना आया और उसमें उन्होंने क्या देखा कि 2 बैल सभी उत्तम लक्षणों से युक्त, ऐसे उन बैलों ने उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर उनके आगे वो नम्र होकर यानी विनय से बैठ गए या नमस्कार किया। इस प्रकार के स्वप्नों को देखकर, अभी वो अष्टांग निमित्त ज्ञानी थे, स्वप्न देखते हैं, सामने मुख देखते हैं या वायु देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं, उसके द्वारा वो निमित्त, ऐसे निमित्तों से क्या चल रहा है उसका ज्ञान हो, पहले आई थी ना बात अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी थे, तो उन्होंने वो स्वप्न को जानकर उसका फल भी जान लिया कि 2 मुनि वहां से निकल चुके हैं। इस प्रकार के स्वप्नों को देखकर संतुष्ट हुए धरसेनाचार्य ने श्रुत देवता जयवंत हो ऐसा वाक्य उच्चारण किया। देखो कैसा अंदर से उनको कि ये श्रुत देवता के लिए कितनी अंदर से उनको ताला वेली की नहीं, अरे ये अभी इतना सब ज्ञान जो है वो स्वयं जानते थे कि मैं जान रहा हूँ वो पूरे श्रुत का एक देश अंग है, बिल्कुल थोड़ा है, पर अभी ये भी नष्ट हो जाएगा ऐसे उनके मन में था, तो वो किसी में अन्य को पढ़ाऊं ताकि वो उसको लिखित रूप दे दे, ऐसी उनकी तीव्र भावना थी। उसी दिन दक्षिणा पद से भेजे हुए वे दोनों साधु धरसेनाचार्य को प्राप्त हुए, यानी वहां पहुंच गए, वो गिरनार पर वहां थे, वहां पहुंच गए। उसके बाद धरसेनाचार्य की पाद वंदना आदि कृति कर्म करके, अन्य से चलकर आए हैं, अभी ये महान आचार्य धरसेन है तो पहले उनके पाद वंदना आदि कृति कर्म, यानी मुनि योग्य जो कुछ उनके जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो करके, और 2 दिन बिताकर तीसरे दिन उन दोनों ने धरसेनाचार्य से निवेदन किया कि इस कार्य से हम दोनों आपके पाद मूल को प्राप्त हुए हैं। उन दोनों साधुओं के इस प्रकार निवेदन करने पर अच्छा है कल्याण हो, इस प्रकार कहकर धरसेन भट्टारक ने उन दोनों साधुओं को आश्वासन दिया। जाते बातें नहीं करते बैठे, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा उधर कैसा है, कौन कौन मुनि है, क्या क्या चलता है। इसके बाद भगवान धरसेन ने विचार किया कि हाँ, ये गाथा भी ऊपर पढ़ेंगे, 2 गाथा एक साथ। से लगन भग गढ़ाई चालणी महिषा विजाहय सुएही मट्टियम सनम समानम वखाणै जो सुदम मोहा दड़गारव परिबद्धो विषयामि सविषवसेन गुम्मन्तो सो भट्ट बोहिलाहो भमै चिरं भववणे मूढ़ो। यानी वह मूढ़ भववर्ण में घूमता है, चिरम यानी सदाकाल, कौन भट्ट बोही लाहो, बोही यानी बोधि, लाहो यानी लाभ, बोधि लाभ से जो भट्ट यानी भ्रष्ट है वो क्या करता है, चिरकाल तक भव भ्रमण करता है, और उसको मूढ़ कहा है। देखो अब यहाँ बात करेंगे, शैलघन भग्न घट, अब ये उपमा देकर समझाए उसकी बात करेंगे आगे। अहि यानी सर्प, चालनी महिष, अवि यानी मेंढा, जाहक यानी जोंक, क्या कहते हैं लीच, नहीं क्या कहते हैं उसको, जलवा, हाँ लीच, हाँ लीच, शुक, शुक का अर्थ जानते हैं, पोपट, हाँ पैरट, पोपट शुक, शुक और बका आता है ना, बके ने बगड़ा तोता, शुके ने तोता, माटी और मशक, मशक है ने कौन सा, मॉस्किटो, दंश मशक आया था ना, मच्छर, जहाँ के ने जोंक, जो के ने लीच, वो जलवा, जलू क्या कहते आप, वो खून चूसती है वो, नहीं समझे आप, ये तो हाँ जड़ू 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 लोही चूसे छे, ये श्रोताओं के भेद चल रहे हैं, ये श्रोताओं के लिए उपमा दे रहे हैं। पहले हमने साधुओं को उपमा देकर समझाया था, वो कैसे कैसे सिंह समान होते हैं, गज समान होते हैं आदि आदि, अब ये शैलघन, ये हर एक का अर्थ करेंगे वो, तो ये श्रोता कितने प्रकार के देखे, देखो शैलघन भग्न घट, भग्न घट यानी फूटा हुआ वो घड़ा, अहि यानी सर्प, चालनी महिष, मेंढा, जोंक, शुक यानी तोता, माटी और मशक के समान श्रोताओं को, यानी ऐसे श्रोताओं को जो मोह से श्रुत का व्याख्यान करता है, क्या ये जिम्मेदारी वक्ता की क्या तो कैसे श्रोता, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसको जाने और जो मिले उसको हम सुनाना प्रारंभ करते हैं, तो ये अपना मार्ग खराब कर देते हैं तो ऐसे अरविंद भाई ने उन्हें को बताया क्या कहते हैं, ऐसे श्रोताओं को जो मोह से, मोह है ना श्रुत का व्याख्यान करता है, वह मूढ़ दृढ़ रूप से रिद्धि आदि तीनों प्रकार के गारवों के आधी होकर, आधीन होकर विषयों की लोलता लोलुपता रूपी विष के वश से मूर्छित हो, बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति से भ्रष्ट होकर, पहले प्राप्ति हुई थी अब उससे भ्रष्ट हुआ, भवन में चिरकाल तक परिभ्रमण करता है। तो जैसे वक्ता कैसे होना चाहिए, वैसे श्रोता भी कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, उसकी बात चल, अभी इसको पढ़ेंगे हम यहाँ, अब ये तो आसान है, हम इसको पढ़ेंगे, यदि बीच में कोई शब्द नहीं आता तो पूछ लेना, हाँ हाँ डिटेल दिया है, गारो यानी उसके अभिमान, मद मद कहते हैं, विशेषार्थ, अभी जो हमने 10 नाम वहां देखे थे उसकी बात करेंगे। शैल नाम पाषाण का है और घन नाम मेघ का है, शैल घन कहा था ना, जिस प्रकार पाषाण मेघ के चिरकाल तक वर्षा करने पर भी आर्द्र या मृदु नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता है, कितनी भी वर्षा हो जावे तो भी वो मृदु नहीं होता, उसी प्रकार कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जिन्हें गुरुजन चिरकाल तक भी धर्मामृत के वर्षण या सिंचन द्वारा कोमल परिणामी नहीं बना सकते हैं, ऐसे श्रोताओं को शैल घन श्रोता कहा है। ये पहला टाइप हुआ। भग्न घट फूटे घड़े को कहते हैं, जिस प्रकार फूटे घड़े में ऊपर से भरा गया जल नीचे की ओर से निकल जाता है, भीतर कुछ भी नहीं ठहरता, एक कान से ग्रहण किया दूसरे से छोड़ा कहते ना हम, ऐसा वाला लिया कि वो कुछ उसके समझ में ही नहीं आता है, इसी प्रकार जो उपदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं उन्हें भग्न घट श्रोता कहा है। अहि नाम साप का है, जिस प्रकार मिश्रित है ने शक्कर डाला हुआ मिश्रित दुग्ध के पान करने पर भी सर्प विष का ही वमन करता है, उसी प्रकार जो सुंदर मधुर और हितकर उपदेश के सुनने पर भी विष वमन करते हैं अर्थात प्रतिकूल आचरण करते हैं उन्हें अहि समान श्रोता समझना चाहिए, अहि यानी साप। अब चालनी जैसा, चालनी जैसे उत्तम आटे को नीचा गिरा देती है, नीचे गिरा देती है और भूसा या चोकर को अपने भीतर रख लेती है, उसी प्रकार जो उत्तम सार युक्त उपदेश को तो बाहर निकाल देते हैं और निस्सार तत्व को धारण करते हैं, वे चालनी समान श्रोता है। महिषा अर्थात भैंसा जिस प्रकार जलाशय से जल तो कम पीता है परंतु बार बार डुबकी लगाकर उसे गंदला कर देता है, क्योंकि क्या पानी साफ होता है और नीचे तो मिट्टी रहती है और उसमें से तो घूमता रहता है तो वो पूरा कीचड़ युक्त गंदगी युक्त हो जाता है पूरा पानी। उसी प्रकार जो श्रोता सभा में उपदेश तो अल्प ग्रहण करते हैं पर प्रसंग पाकर क्षोभ या उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं, वे महिषा समान श्रोता है। देखते हैं कोई तो चाहते कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछेंगे या कुछ करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे या, तो ये महिषा समान। अविनाम मेष यानी मेंढा का है, जैसे मेंढा पालने वाले को ही मारता है उसी प्रकार जो उपदेशदाता की ही निंदा करते हैं और समय आने पर घात करने तक को उद्यत रहते हैं, उन्हें अवि के समान श्रोता समझना चाहिए। हम देखते हैं बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी ऐसे लोग लगे रहते हैं। क्या मेंढा वो सिंह वाला मेंढा? हम दे भोग भूमि के मेंढे की बात हम कितने बार लेते हैं ना। वो जाहक नाम से ही आदि अनेक जीवों का है पर प्रकृति में जोंक अर्थ ग्रहण किया है, जैसे जोंक को स्तन पर भी लगावे तो भी वह दूध न पीकर खून ही पीती है, ये उसकी विशेषता है, खून ही एब्सॉर्ब करती रहेगी। इसी प्रकार जो उत्तम आचार्य या गुरु के समीप रहने पर भी रहकर भी उत्तम तत्व को तो ग्रहण नहीं करते पर अधम तत्व को ही ग्रहण करते हैं, वे जोंक के समान श्रोता है। शुक नाम तोते का है, तोते को जो कुछ सिखाया जाता है वह सीख तो जाता है पर उसे यथार्थ अर्थ प्रतिभासित नहीं होता, उसी प्रकार उपदेश स्मरण कर लेने पर भी जिनके हृदय में भाव भासना नहीं होती, ये तो शब्द तो रट जाते, ये शब्दों की रटने की बात है परंतु भाव कुछ अंदर उतरता नहीं है, तो उसको कहते हैं वे शुक समान श्रोता है। शुक है ना तोता, मट्टी जैसे जल के संयोग मिलने पर तो कोमल हो जाती है पर जल के अभाव में पुनः कठोर हो जाती है, इसी प्रकार जो उपदेश मिलने तक तो मृदु परिणामी बने रहते हैं और बाद में पूर्ववत ही कठोर हृदय हो जाते हैं, वे मट्टी के समान श्रोता है। कितने लोग कहते हैं ना हम सुनते हैं तब तक तो अच्छा लगता है बात। मशक अर्थात मच्छर पहले कानों में आकर गुनगुनाता है, चरणों में गिरता है किंतु अवसर पाते ही काट खाता है, उसी प्रकार जो श्रोता पहले तो गुरु या उपदेशदाता की प्रशंसा करेंगे, चरण वंदना भी करेंगे पर अवसर आते ही काटे बिना न रहेंगे, उन्हें मशक के समान श्रोता समझना चाहिए। यानी कितनी वैरायटी है ना श्रोताओं में। उक्त सभी प्रकार के श्रोता अयोग्य है, उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। ये उपदेशदाता का कर्तव्य है कौन से श्रोता, क्योंकि हमें ऐसा लगता नहीं मार्ग इतना सुंदर है चाहे जिसको सुनाए, परंतु सामने का जीव कैसा पात्र है अपात्र है वो भी देखना अपना कर्तव्य है। कोई भी दान देते, कोई भी दान, यहाँ तो ज्ञान ज्ञान की बात है, कोई भी दान देते समय वो पात्र अपात्र का विचार तो होना ही चाहिए, यानी क्या कौन सी चीज दान में दे रहे है उसका विचार चाहिए, किसको दे रहे हैं उन्हें सामने वाला पात्र है कि नहीं पात्र इसका भी विचार चाहिए, यानी देने वाला की योग्यता, दाता यानी दातार की योग्यता, दातृ द्रव्य की जो योग्यता और जो पात्र जो है रिसीव करने वाला उसकी भी योग्यता, ऐसे सब सभी ओर से उसका विचार होना चाहिए। किसी किसी शास्त्र में उक्त नामों में तथा अर्थ में भेद भी देखने में आता है किंतु कुछ श्रोताओं का भाव यहाँ पर अभीष्ट है, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी श्रोता कितने प्रकार के उसमें भी लिखा है ना, आता है उसमें भी अलग अलग वक्ता भी कितने कैसे होना चाहिए श्रोता कैसे होना चाहिए उसका वर्णन आता है। इस वचन के अनुसार यथा छंद अर्थात स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करने वाले श्रोताओं को विद्या देना संसार और भय का ही बढ़ाने वाला है। ये वक्ता के लिए डेंजर है बता रहे, यानी ऐसे श्रोताओं को सिखाना संसार को बढ़ाना है, कहते हैं संसार और भय को ही बढ़ाने वाला है। ऐसा विचार कर शुभ स्वप्न के देखने मात्र से ही, यद्यपि धर्सेन भट्टारक ने उन आए हुए दोनों साधुओं के अंतर अर्थात विशेषता को जान लिया था, तो भी फिर से उनकी परीक्षा लेने के निश्चय किया, क्योंकि उत्तम प्रकार से ली गई परीक्षा हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। वे तो निमित्त ज्ञानी थे, पहले में पहले अन्य आचार्यों ने भेजा था तो कोई योग्य सुयोग्य शिष्यों को ही भेजे होंगे। स्वप्न के द्वारा भी इन्होंने जान लिया था कि ये उत्तम शिष्य है, फिर भी उनकी परीक्षा करके फिर उनको वो श्रुत का अभ्यास कराया, उन्होंने उनको उपदेश दिया। इसके बाद धर्सेनाचार्य ने उन दोनों साधुओं को दो विद्याएं दी, विद्याएं दी यानी कोई मंत्र उनको दे दिया और उनको कहा इस मंत्र की साधना करो। उनमें से यानी उन्होंने अभी फिर दो तीन उपवास धारण किए और उस मंत्र की साधना की, तो उससे क्या हुआ, उनमें से एक अधिक अक्षर वाली थी, यानी जो विद्या यानी जो मंत्र था वो एक उसमें एक अक्षर एक्स्ट्रा लिखा था, और दूसरी हीन अक्षर वाली थी उसमें एक अक्षर कम था। दोनों को दो विद्याएं देकर कहा कि इनको श्रेष्ठ भक्त उपवास अर्थात दो दिन के उपवास से सिद्ध करो, दो उपवास करके इसकी श्रेष्ठ भक्त अभी देखेंगे उसका कहीं आता है दूसरे इसके बाद जब उनको विद्याएं सिद्ध हुई तो उन्होंने विद्या की अधिष्ठात्री देवताओं को देखा कि एक देवी के दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है। ये शिष्यों ने देखा विकृतांग होना देवताओं का स्वभाव नहीं होता है। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल उन दोनों ने हीन अक्षर वाली विद्या में अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षर वाली विद्या में से एक अक्षर निकालकर मंत्र को पढ़ना अर्थात फिर से सिद्ध करना प्रारंभ किया, यानी दोबारा उन्होंने उपवास करके फिर विद्या की साधना की, जिससे वे दोनों विद्या देवताएं अपने स्वभाव और अपने सुंदर रूप में स्थित दिखलाई पड़ी। तदनंतर भगवान धर्सेन से सरसन के समक्ष योग्य विनय सहित उन दोनों के विद्या सिद्धि संबंधी समस्त वृत्तांत के निवेदन करने पर बहुत अच्छा इस प्रकार संतुष्ट हुए धर्सेन भट्टारक ने, यानी वो सब उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे हुआ था, तो उन्होंने जानबूझकर ही ऐसे उनको वो एक कम अक्षर वाला ज़्यादा अक्षर वाला की उनकी टेस्ट करना चाहते थे, वो कितना जानते हैं कि हमने बताया और उन्होंने कर लिया और संतुष्ट हो गया, ऐसा नहीं है, उस पर विचार करते। तो धर्सेन आचार्य ने शुभ तिथि शुभ नक्षत्र और शुभवार में ग्रंथ का पढ़ाना प्रारंभ किया। इस तरह क्रम से व्याख्यान करते हुए धर्सेन भगवान से उन दोनों ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वाह्न काल में ग्रंथ समाप्त किया, यानी पढ़कर समाप्त किया, पढ़ा उन्होंने अभी लिखा नहीं है, विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त किया। इसलिए संतुष्ट हुए भूत जाति के व्यंतर देवों ने उन दोनों में से एक की पुष्प बलि तथा शंख और तूर्य जाति के वाद्य विशेष के नाद से व्याप्त बड़ी भारी पूजा की। उसे देखकर धर्सेन भट्टारक ने उनका भूत बलि यह नाम रखा, तथा जिनकी भूतों ने पूजा की है और अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके भूतों ने जिनके दांत समान कर दिए हैं ऐसे दूसरे का भी धर्सेन भट्टारक ने पुष्प दंत नाम रखा। यानी यहाँ तक उन्होंने वो विद्या ग्रहण की, विद्या पूरा उपदेश ग्रहण किया और वो ग्रंथ पूरा ही पूरा उन्होंने समझा है उनको, इस तरह से उन्होंने ग्रंथ का धारण कर दिया। अब आगे की जो बात है, हाँ धर्सेन आचार्य, और उसी नाम से वे बाद में प्रसिद्ध हुए। अब इसके आगे की बात हम कल पढ़ेंगे, प्रस्तावना में भी ये बात हमने कल देखी थी 16-17 पेज पर, वहाँ भी है और यहाँ भी कुछ लिखी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोग ऑपरेशन